अगर मैं ये कहूँ कि मटन स्टू की एक कटोरी, बकरियों की खाल से बना एक अजीब सा कॉस्ट्यूम और एक प्राचीन भाषा के व्याकरण की बस एक छोटी सी गलती।
व्याकरण की गलती।
हाँ बिल्कुल, व्याकरण की एक छोटी सी गलती ने सदियों लंबे खूनी युद्ध की नींव रख दी। एक ऐसा विवाद जिसने पीढ़ियों तक सफर किया और अंततः उसी की वजह से किंग हेरोद जैसे क्रूर शासक का उदय हुआ। तो किसी को भी इस बात पर बहुत हैरानी होगी।
हाँ, मतलब ये सुनने में तो किसी किसी फैंटेसी नॉवल की स्क्रिप्ट जैसा लगता है ना,
बिल्कुल
लेकिन असल में ये मानव इतिहास और परिवार की राजनीति की सबसे पेचीदा और सबसे सच्ची घटनाओं में से एक है।
सही कहा आपने, और इसीलिए आज के इस डीप डाइव चर्चा में हम डॉक्टर रॉबर्ट वेनॉय के ओल्ड टेस्टमेंट इतिहास के लेक्चर नोट्स की गहराई में जा रहे हैं।
जो कि एक बहुत ही शानदार ऐतिहासिक दस्तावेज है।
हाँ, और हमारा मकसद सिर्फ एक पुरानी कहानी को दोहराना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि आइजैक, रिबेका, जेकब और एसाव के जीवन में मौजूद जो धोखे थे, जो पॉलिटिक्स थी, उसने कैसे आने वाली सदियों का नक्शा बदल दिया।
बिल्कुल, हम ये देखेंगे कि कैसे व्यक्तिगत कमियां, हमारी इंसानी कमजोरियां और बंद कमरों में लिए गए फैसले एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक योजना का हिस्सा बन जाते हैं।
क्योंकि देखिए, इतिहास हमेशा महान और परफेक्ट लोगों द्वारा नहीं लिखा जाता।
हाँ, ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है। कभी-कभी इतिहास की सबसे बड़ी घटनाएं उन लोगों के जरिए घटती हैं जो अपनी ही असुरक्षा और लालच में उलझे होते हैं।
वही तो, और डॉक्टर वेनॉय के नोट्स पढ़ते हुए मेरे दिमाग में एक अजीब सी तुलना आ रही थी।
अच्छा, कैसी तुलना?
आइजैक का जीवन मुझे एक ऐसे व्यक्ति जैसा लगता है जिसे विरासत में एक बहुत बड़ी, मतलब अरबों डॉलर की मल्टीनेशनल कंपनी मिली है। सब कुछ उसके नाम पर है, ईश्वर के वादे उसके साथ हैं, लेकिन वो फैसले खुद लेने के बजाय पूरी तरह से अपने कर्मचारियों या कहिए अपने माता पिता के बनाए पुराने नियमों पर छोड़ देता है।
यानी कोई पहल नहीं करता।
बिल्कुल नहीं, यहाँ तक कि उसकी शादी भी उसके पिता के नौकर द्वारा तय की गई थी। वो बस कुर्सी पर बैठा एक ऐसा सीईओ है जिसका कंपनी की दिशा पर कोई कंट्रोल ही नहीं है।
यह एक बहुत ही सटीक एनालॉजी है। एक ऐसा सीईओ जो स्टीयरिंग व्हील पर हाथ रखे बिना ही गाड़ी चला रहा है।
हाँ एग्जैक्टली
लेकिन डॉक्टर वोनॉय यहाँ एक बहुत गहरा पॉइंट रखते हैं। आइजैक की यह जो निष्क्रियता है वो महज उसका व्यक्तिगत स्वभाव नहीं है। अगर हम इस पूरी कहानी की बड़ी तस्वीर देखें तो पता चलता है कि ईश्वरीय प्रतिज्ञाएं जो थी वो सामान्य प्राकृतिक प्रक्रियाओं के जरिए आगे नहीं बढ़ रही थी।
एक सेकेंड, प्राकृतिक प्रक्रियाओं से आपका क्या आशय है?
मतलब ये कि इस परिवार के वंशावली स्वाभाविक तरीके से नहीं चल रही थी। इसके लिए हर कदम पर एक विशेष हस्तक्षेप, एक स्पेशल इंटरवेंशन की जरूरत पड़ रही थी।
अच्छा, जैसे कि वो बांझपन वाली बात।
हाँ बिल्कुल, आप देखिए, रिबेका शादी के बाद 20 साल तक बांझ रही। आइजैक की उम्र 60 साल हो चुकी थी जब जेकब रेसों का जन्म हुआ। ये कोई आम बात तो नहीं है ना?
हाँ, ये तो काफी असामान्य है।
ये दिखाता है कि ये परिवार और इसकी विरासत एक अलग ही टाइमलाइन और एक अलग ही योजना पर चल रही थी जिसे इंसान अपने बलबूते पर कंट्रोल नहीं कर सकता था।
लेकिन यहीं से तो कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। आइजैक जो अब तक इतना निष्क्रिय था, जो हर चीज को बस होने दे रहा था, वो अचानक से अपनी सीट से उठता है और कंपनी का पूरा सिस्टम अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करता है।
हाँ, और वो भी एक ऐसे समय पर जब उसे ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए था।
बिल्कुल, और यहीं से उस परिवार में भयंकर छल कपट की शुरुआत होती है।
सही कहा।
हम सभी जानते हैं कि जैकब और एसाव के जन्म के समय ही भविष्यवाणी हो चुकी थी कि बड़ा भाई छोटी की सेवा करेगा। जन्म के समय का सीन भी कितना नाटकीय था।
बहुत नाटकीय। एसाव लाल और बालों वाला पैदा हुआ और जैकब सचमुच उसकी एड़ी पकड़े हुए दुनिया में आया।
हाँ, मानो वो जन्म से ही उससे आगे निकलने की होड़ में हो। अब आइजैक को ये ईश्वरीय भविष्यवाणी पता थी, फिर भी वो अपने जीवन के आखिरी पड़ाव पर आकर इस भविष्यवाणी के खिलाफ जाता है।
वो एसाव को अपना मुख्य आशीर्वाद देना चाहता है।
और कारण क्या था? कोई योग्यता नहीं, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे एसाव के द्वारा शिकार किया हुआ मांस खाना बहुत पसंद था। मतलब एक मटन स्टू के लिए।
ये इंसानी फितरत का बहुत ही कमजोर बिंदु है। आइजैक का एसाव की तरफ झुकाव पूरी तरह से उसके शिकार और स्वादिष्ट भोजन की वजह से था।
ये तो सरासर पक्षपात है।
बिल्कुल। दूसरी ओर रिबेका जैकब से ज्यादा प्यार करती थी। परिवार में ये जो पक्षपात था वो अपने चरम पर था। आइजैक ईश्वरीय वादे को जानता था, फिर भी वो एसाव को आशीर्वाद देकर एक तरह से परमात्मा की योजना को अपने स्वाद और अपनी पसंद के लिए पलटना चाहता था।
रुकिए, मुझे यहाँ एक बात समझ नहीं आ रही। अगर आइज़ैक को पहले से पता था कि बड़ा बेटा छोटे की सेवा करेगा, तो वो इसे बदलने की कोशिश करी ही क्यों रहा था?
यही तो सबसे बड़ा सवाल है।
ये तो वैसा ही है जैसे कोई फिल्म की स्क्रिप्ट का क्लाइमैक्स पहले ही पढ़ ले, उसे पता हो कि एंडिंग क्या है, और फिर भी वो पर्दे पर जाकर कहानी बदलने की जिद करे। क्या उसे सच में लगता था कि वो ईश्वर के फैसले को पलट देगा?
यही तो डॉक्टर वेनॉय समझाना चाहते हैं। आइज़ैक बुढ़ापे में अपनी जिद पर अड़ गया था। उसे लगता था कि एक पिता के रूप में आशीर्वाद देने का अधिकार उसका है, और वो इसे अपनी पसंद के बेटे को ही देगा।
यानी एक तरह का अंधापन?
हाँ, ये एक तरह का आध्यात्मिक अंधापन था जो उसके शारीरिक अंधेपन के साथ साथ चल रहा था।
और इसी अंधेपन का फायदा रिबेका और जेकब उठाते हैं।
बिल्कुल।
जब आइज़ैक एसौ से स्वादिष्ट भोजन लाने को कहता है ताकि वो उसे आशीर्वाद दे सके, रिबेका ये सुन लेती है, और फिर शुरू होती है इतिहास की सबसे अजीबोगरीब साजिश,
वो बकरियों की खाल वाली साजिश।
हाँ, वे जेकब के हाथों और गर्दन पर बकरियों की खाल बांधते हैं ताकि वो एसौ जैसा बालों वाला महसूस हो, और अंधे आइज़ैक को धोखा देते हैं। लेकिन यहां मेरे दिमाग में डॉक्टर विनॉय के नोट से एक विद्वान एलिसन का जिक्र आता है।
हाँ, एलिसन का नजरिया इस घटना को लेकर काफी अलग है। हम यहाँ किसी का पक्ष नहीं ले रहे, बस नोट्स के आधार पर बात कर रहे हैं।
बिल्कुल, हम सिर्फ उनका नजरिया बता रहे हैं। तो एलिसन कहते हैं कि रिबेका और जेकब तो बस ईश्वर की इच्छा ही पूरी कर रहे थे। एक तरह से देखा जाए तो ईश्वर ने ही कहा था कि जेकब को आशीर्वाद मिलेगा।
हाँ, उन्होंने ऐसा तर्क दिया है।
तो क्या हम यह रिबेका को पूरी तरह गलत ठहरा सकते हैं? वो कहावत है ना, ईश्वर उनकी मदद करता है जो अपनी मदद खुद करते हैं। क्या रिबेका बस अपनी तरफ से डेस्टिनी को थोड़ा पुश नहीं कर रही थी?
क्या हम इस धोखे को जायज ठहरा सकते हैं?
ये एक बहुत ही क्रिटिकल सवाल है। क्या सही मकसद के लिए गलत रास्ता अपनाना सही है? डॉक्टर वेनॉय इस पर एक अन्य विद्वान लियोपोल्ड का हवाला देते हैं। लियोपोल्ड इसे मानव बुद्धि पर आधारित अधूरी आस्था का उदाहरण मानते हैं।
अधूरी आस्था मतलब उन्हें भरोसा नहीं था?
बिल्कुल, सच्चाई ये है कि दोनों पक्ष गलत थे।
अच्छा, दोनों कैसे?
देखिए, आइज़ैक ईश्वर की इच्छा को टालना चाहता था, जो कि उसकी सबसे बड़ी गलती थी। लेकिन रिबेका और जेकब ने जो तरीका अपनाया वो भी पूरी तरह से अनुचित था। ईश्वर को अपनी भविष्यवाणी पूरी करने के लिए किसी की चालाकी या बकरियों की खाल की जरूरत नहीं थी।
ये बात तो है। अगर रिबेका चुप रहती तो भी ईश्वर कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेते। उन्होंने अपने ही हाथों से चीजें ठीक करने की कोशिश की क्योंकि उन्हें ईश्वर के तरीके पे पूरा भरोसा नहीं था।
तो इसका नतीजा क्या निकला? मतलब इस पूरे ड्रामे से हमें क्या समझ आता है?
सबसे बड़ा निष्कर्ष ये है कि मानवीय पाप, चालाकियों और इन साजिशों के बावजूद अंतिम परिणाम वही हुआ जो पहले से निर्धारित था।
यानी जेकब को आशीर्वाद मिल गया।
हाँ, आइज़ैक को लगता है कि वो एसो को आशीर्वाद दे रहा है, लेकिन वो अनजाने में जेकब को वही ईश्वरीय आशीर्वाद दे देता है। ईश्वर ने उनके छल का समर्थन बिल्कुल नहीं किया। हम आगे देखेंगे कि जेकब को इसकी कितनी भारी कीमत चुकानी पड़ी। लेकिन ईश्वर ने अपनी योजना को उसी अस्त व्यस्त मानवीय स्थिति के बीच से पूरा किया।
ये वाकई हैरान करने वाला है कि कैसे इंसान अपनी छोटी सी सोच में उलझा रहता है जबकि बड़ी कहानी अपने तरीके से आगे बढ़ रही होती है।
बिल्कुल।
लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। जब हम इस धोखे के तुरंत बाद के नतीजों पर आते हैं तो ये सिर्फ एक घर का झगड़ा नहीं रह जाता। जेकब द्वारा आशीर्वाद चुराए जाने की घटना से हम एक ऐसे अनुवाद के पैच की तरफ बढ़ते हैं जिसने इतिहास की दिशा ही बदल दी।
आप उस पल की बात कर रही हैं जब एसाउ शिकार से वापस लौटता है।
जी हाँ, जरा सोचिए, एसाउ खाना मना के लाता है और तब आइज़ैक को एहसास होता है कि उसके साथ क्या हुआ है।
वो बहुत ही भावुक पल था।
नोट्स बताते हैं कि आइज़ैक बुरी तरह कांपने लगता है और एसाउ वो फूट फूट कर रोता है। वो अपने पिता से मिन्नतें करता है कि क्या आपके पास मेरे लिए कोई आशीर्वाद नहीं बचा? और तब आइज़ैक उसे जो तथाकथित आशीर्वाद देता है वो जेनेसिस 27:39 में दर्ज है। और यहाँ भाषा और व्याकरण का एक ऐसा खेल होता है जो किसी के भी रोंगटे खड़े कर दे,
क्योंकि यहाँ हिब्रू भाषा का एक छोटा सा प्रेपोजिशन पूरी कहानी बल्कि पूरे इतिहास का अर्थ बदल देता है।
मैं इसे आज के समय के एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट की तरह देखती हूँ। आप जानते हैं, कॉर्पोरेट दुनिया में कॉन्ट्रैक्ट में सिर्फ एक कॉमा या एक छोटे से शब्द के गलत अनुवाद से करोड़ों का फायदा भारी जुर्माने में बदल सकता है।
बिल्कुल ऐसे ही हुआ था यहाँ।
डॉक्टर विनॉय समझाते हैं कि यहाँ हिब्रू शब्द मिन का इस्तेमाल हुआ है। अब ये मिन शब्द बहुत ट्रिकी है। सवाल ये है कि क्या ये मिन स्रोत यानी सोर्स को दर्शाता है या फिर अलगाव यानी सेपरेशन को।
और मजे की बात यह है कि सदियों तक लोग इसे गलत समझते रहे।
सच में किंग जेम्स अनुवाद जो कि बहुत प्रसिद्ध है उसने इसे स्रोत मान लिया। उसके अनुसार आइजैक ने एसॉ को आशीर्वाद दिया कि तुम्हें पृथ्वी की समृद्धि मिलेगी बिल्कुल वैसा ही जैसा जैकब को मिला था। लेकिन आधुनिक एनआईवी अनुवाद इसे पूरी तरह से पलट देता है। वह इसे अलगाव के रूप में पढ़ता है और तब यह आशीर्वाद नहीं बल्कि एक श्राप बन जाता है। एनआईवी के अनुसार आइजैक कहता है तुम्हारी जगह पृथ्वी की समृद्धि से दूर होगी।
और अगर हम इसके पीछे के मैकेनिज्म यानी ऐतिहासिक और भौगोलिक साक्ष्यों को देखें तो एनआईवी का अनुवाद ही एकदम सटीक बैठता है।
वो कैसे? मतलब भूगोल से इसका क्या लेना देना?
क्योंकि एसॉ के वंशज आगे चलकर एदोमी कहलाए और एदोम कोई उपजाऊ जमीन नहीं थी।
अच्छा, वो बंजर थी।
बहुत बंजर। ये मृत सागर यानी डेड सी के दक्षिण में एक बेहद कठोर और चट्टानी भूमि थी। वहां पृथ्वी की कोई समृद्धि नहीं थी। उन्हें तलवार के बल पर जीना पड़ा। आइजैक ने एसॉ को जो दिया वो शब्दों के जाल में लिपटा हुआ एक श्राप ही था।
बाप रे।
और सबसे बड़ी बात, इस एक वाक्य ने एक ऐसी जियोपॉलिटिकल दुश्मनी को जन्म दिया जो सदियों तक खत्म नहीं हुई।
ये हिस्सा मुझे सबसे ज्यादा चौंकाता है। मतलब एक परिवार के दो भाइयों का झगड़ा आगे चलकर दो राष्ट्रों का खूनी संघर्ष बन गया।
बिल्कुल। जैकब के वंशज इसराइल बने और एसाओ के वंशज एदोम। इनके बीच की दुश्मनी का इतिहास बहुत खूनी रहा है। किंग डेविड के समय में इसराइल ने एदोमियों पर बुरी तरह कब्जा किया। पीढ़ियों तक उनके बीच सत्ता का संघर्ष चलता रहा। लेकिन इसका सबसे दिलचस्प और विडंबना भरा मोड़ तब आता है जब हम इंटरटेस्टामेंटल काल यानी पुराने और नए नियम के बीच के समय में पहुंचते हैं।
हाँ, मैकबीज के समय में।
राइट। सही कहा,
सही कहा।
उस दौरान एदोमियों को उनके इलाके से धकेल दिया गया था और मैकबीज ने, जो कि यहूदी थे, उन्होंने एदोमियों को जबरन यहूदी धर्म अपनाने पर मजबूर किया।
तलवार के जोर पर।
हाँ, उन्होंने तलवार के जोर पर उन्हें कन्वर्ट किया। तब इन एदोमियों को एदोमियन कहा जाने लगा। और क्या आपको अंदाजा है कि इसी एदोमियन वंश से आगे चलकर कौन पहला हुआ?
किंग हेरोद।
जी,
हेरोद महान।
बिल्कुल, वही हेरोद जो नए नियम के युग में यहूदियों का राजा बना।
ये सच में दिमाग घुमा देने वाला है। जरा डॉट्स कनेक्ट करके देखिए। जैकब ने एसाओ का आशीर्वाद चुराया जिससे एदोमियों को एक बंजर जमीन मिली। सदियों बाद जैकब के वंशजों ने एदोमियों को जबरन अपने धर्म में शामिल किया। और अंत में उसी एसाओ के वंश का एक व्यक्ति हेरोद वापस लौटकर जैकब के वंशजों यानी यहूदियों का एक बेहद क्रूर और ताकतवर राजा बन बैठा।
ये किसी एपिक महाकाव्य के परफेक्ट क्लाइमैक्स जैसा है।
यही इतिहास का पहिया है, कैसे एक बंद टेंट के अंदर हुआ पारिवारिक धोखा सदियों का भू राजनैतिक स्वरूप तय कर सकता है। ये उसका सबसे बड़ा और खौफनाक उदाहरण है।
लेकिन चलिए उस बंद टेंट से बाहर निकलते हैं और कहानी में वापस लौटते हैं, क्योंकि जैकब की मुश्किलें अभी शुरू ही हुई थी।
हाँ, एसाओ शांत तो बैठने वाला नहीं था।
बिल्कुल नहीं।
जैसे ही एसाओ को पता चलता है कि उसका हक मारा गया है, जाहिर है वो खून का प्यासा हो जाता है। वो जैकब को जान से मारने की कसम खाता है और यहाँ से जैकब को अपनी जान बचाकर भागना पड़ता है। लेकिन यहाँ रिबेका, मास्टरमाइंड रिबेका, एक और चाल चलती है।
हाँ, रिबेका कभी सीधे बात नहीं करती थी। उसका असली मकसद जैकब की जान बचाना था। लेकिन आइजैक के पास जाकर वो ये नहीं कहती कि तुम्हारा बड़ा बेटा छोटे को मारना चाहता है।
तो वो क्या कहती है?
वो एक नया बहाना बनाती है।
हाँ, मुझे याद आया, वो धार्मिक शुद्धता का कार्ड खेलती है। वो आइजैक से कहती है कि मुझे यहाँ की कनानी लड़कियों से नफरत है, अगर जेकब ने भी इनसे शादी कर ली तो मेरे जीने का क्या फायदा। इसलिए उसे मेरे भाई लाबान के पास हारान भेज दो ताकि वो अपनी ही बिरादरी में शादी करे।
और आइजैक फिर से उसकी बात मान लेता है। जेकब घर से निकल जाता है। लेकिन इस शारीरिक पलायन के बीच एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना घटती है।
वो बेथेल वाली घटना?
जी, बेथेल नाम की जगह पर जेकब की एक अजीबोगरीब आध्यात्मिक यात्रा शुरू होती है। रात को सोते समय उसे एक सपना आता है जिसे दुनिया जेकब्स लैडर या जेकब की सीढ़ी के नाम से जानती है।
हाँ, जहाँ स्वर्गदूत एक विशाल सीढ़ी से ऊपर नीचे आ जा रहे हैं और ईश्वर खुद सबसे ऊपर खड़े हैं।
इस सीढ़ी का प्रतीकवाद बहुत गहरा है। स्वर्गदूत दरअसल जेकब की जरूरतों और उसके डरों को ऊपर ले जा रहे हैं और बदले में ईश्वर की कृपा और सुरक्षा नीचे ला रहे हैं। इसी सपने में ईश्वर जेकब को बिना किसी शर्त के वही वादा देते हैं जो उन्होंने उसके दादा अब्राहम को दिया था, जमीन, अनगिनत वंशज और सुरक्षा।
और यहीं पर मुझे जैकब पर बहुत तेज गुस्सा आता है।
गुस्सा क्यों?
मतलब ईश्वर उसे एक ब्लैंक चेक दे रहे हैं बिना किसी शर्त के, और जैकब की प्रतिक्रिया क्या होती है? जेनेसिस 28:20-22 में इतने बड़े ईश्वरीय दर्शन के बाद जैकब एक मन्नत मांगता है।
हाँ, वो सौदेबाजी वाली बात।
वो कहता है कि अगर भगवान मेरे साथ रहें, मुझे रोटी कपड़ा दें और मुझे सुरक्षित घर लौटा दें, तो ये भगवान मेरे ईश्वर होंगे। मतलब रुकिए, क्या सच में?
ये सुनने में तो अजीब लगता है।
क्या जैकब ईश्वर को कोई कॉस्मिक वेंडिंग मशीन समझ रहा है कि अगर तुम मुझे सुविधा दोगे, मुझे प्रोटेक्ट करोगे, तभी मैं तुम्हें अपना भगवान मानूंगी? ये तो पूरी तरह से एक इंश्योरेंस पॉलिसी की तरह लग रहा है, जहां जैकब प्रीमियम चुकाने से पहले अपनी रिटर्न की गारंटी मांग रहा है।
आपका ये गुस्सा और कन्फ्यूजन बिल्कुल जायज है, और मजे की बात यह है कि धर्मशास्त्री भी इस बात पर सदियों से बहस कर रहे हैं। डॉक्टर वैनोय बताते हैं कि लियोपोल्ड और एल्डर्स नाम के दो विद्वानों के बीच यहाँ एक बहुत बड़ी व्याकरणिक बहस है।
व्याकरण का खेल यहाँ भी?
बिल्कुल। सवाल यह है कि वाक्य में देन यानी तो कहाँ लगाया जाए।
अच्छा, इससे क्या फर्क पड़ता है?
फर्क पड़ता है। लियोपोल्ड का मानना है कि अगर हम इस पूरे वाक्य को एक शर्त की तरह अनुवाद करें तो ये जेकब की भावना को बहुत ही सस्ता और सौदेबाजी वाला बना देता है। लियोपोल्ड इसे थोड़ा नरम करने की कोशिश करते हैं। लेकिन एल्डर्स की व्याख्या यहाँ ज्यादा यथार्थवादी और कड़वी सच्चाई जैसी लगती है।
एल्डर्स क्या कहते?
एल्डर्स कहते हैं कि वाक्य वैसा ही है जैसा वो दिख रहा है। जेकब सच में सौदेबाजी कर रहा था।
सीरियसली?
हाँ, क्योंकि उसने अभी तक खुद को पूरी तरह से ईश्वर को समर्पित नहीं किया था, और अगर हम मानव मनोविज्ञान को देखें तो ये बिल्कुल सही बैठता है।
मतलब जेकब अभी भी बदला नहीं था?
बिल्कुल नहीं। देखिए, इंसान का आध्यात्मिक विकास रातों रात नहीं होता। जैकब जो अपनी पूरी जिंदगी अपनी चतुराई, अपनी सौदेबाजी और दूसरों को धोखा देने पर निर्भर रहा है, वो अचानक एक संत नहीं बन सकता।
हाँ, ये लॉजिक तो है।
भले ही उसने साक्षात ईश्वर को देख लिया हो, वो अभी भी अपने स्वार्थी और छली स्वभाव में अटका हुआ है। वो ईश्वरीय वादे को भी एक ट्रांजैक्शन या लेन देन की नजर से देख रहा है।
ये बहुत ही डीप ऑब्जर्वेशन है। हम सोचते हैं कि एक चमत्कार इंसान को पूरी तरह बदल देगा, लेकिन हमारी फितरत इतनी आसानी से हमारा पीछा नहीं छोड़ती।
बिल्कुल सही कहा।
और जैकब की यही स्वार्थी प्रवृत्ति और चालाकी अंततः उसी पर भारी पड़ने वाली थी, जिसने अपने अंधे पिता को बड़े छोटे भाई के नियम का फायदा उठाकर धोखा दिया था। अब उसे जीवन का सबसे बड़ा धोखा मिलने वाला था। मुझे लगता है इतिहास की सबसे बड़ी पोएटिक जस्टिस, या जिसे हम कर्मा कहते हैं, वो अब हरान में जैकब का इंतजार कर रहा था।
आप उसके मामा लाबान के घरतरी घटनाओं की बात कर रही हैं?
जी हाँ, ये हिस्सा किसी सस्पेंस थ्रिलर से कम नहीं है। जैकब अपने मामा लाबान के घर पहुंचता है। वहां उसे लाबान की छोटी बेटी रेशल से प्यार हो जाता है। लाबान उससे कहता है कि रेशल से शादी करने के लिए उसे 7 साल काम करना होगा। जैकब खुशी खुशी 7 साल गधों की तरह मेहनत करता है, और फिर शादी की रात आती है। लेकिन अगली सुबह जब सूरज उगता है और जैकब अपने बगल में देखता है, तो वहां रेशल नहीं बल्कि लाबान की बड़ी बेटी लिया होती है।
ये एक बहुत बड़ा झटका था उसके लिए।
अब आप मुझे एक बात बताइए, ये कैसे संभव है? एक आदमी को पूरी रात कैसे नहीं पता चला कि वो किससे शादी कर रहा है और किसके साथ है? ये तो एक क्लासिक बेट एंड स्विच घोटाला है, जहां आप ऑनलाइन ऑर्डर कुछ और करते हैं और डिलीवरी किसी और चीज की होती है।
हाँ, ये आज के समय में भले ही असंभव लगे, लेकिन ऐतिहासिक संदर्भ इसे बहुत अच्छी तरह समझाता है।
अच्छा, कैसे?
उस समय शादियों में एक बहुत बड़ा जश्न होता था। लोग हफ्तों तक मनाते थे और बहुत अधिक शराब पी जाती थी, और सबसे महत्वपूर्ण बात, उस युग में दुल्हनें भारी घूंघट में रहती थी।
ओ, मतलब चेहरा ढका हुआ होता था।
बिल्कुल। अंधेरे टेंट, नशे की हालत और घूंघट के माहौल में लाबान के लिए अपनी बड़ी बेटी को रेशेल की जगह भेजना बहुत आसान था। और जाहिर है, लिया भी इस साजिश में पूरी तरह शामिल थी। वो पूरी रात खामोश रही होगी।
और जब जैकब सुबह लाबान से भिड़ता है, तो लाबान का बहाना क्या था? वो कहता है कि हमारे देश में छोटी बेटी की शादी बड़ी से पहले नहीं होती। क्या कमाल की विडम्बना है।
विडम्बना इसलिए क्योंकि जैकब को उसी नियम के तहत धोखा मिला जिसका उसने खुद फायदा उठाया था, बड़े और छोटे का नियम।
एग्जैक्टली।
जैकब ने छोटे होकर बड़े का हक मारा था, और लाबान ने वही तर्क इस्तेमाल किया कि बड़ी बेटी का हक पहले है।
डॉक्टर वेनॉय के नोट्स में इवेंजेलिकल थियोलॉजिकल सोसाइटी के जर्नल से एक बहुत ही व्यंग्यात्मक कविता, एक लिमरिक का जिक्र है। उसका सार कुछ ऐसा है कि जैकोब ने बिना किसी शक के 7 साल काम किया और लाबान ने बड़ी चालाकी से उसे धोखा दे दिया, जैसे मुस्कुराकर कह रहा हो, बेटा शर्तें ध्यान से पढ़ें।
रीड द फाइन प्रिंट।
हाँ, रीड द फाइन प्रिंट।
द डिसीवर डिसीव्ड।
धोखेबाज के साथ धोखा।
जैकोब को रेचल के लिए और 7 साल काम करना पड़ा।
लेकिन इस पूरी घटना का सबसे अहम पहलू ये नहीं है कि जैकोब को सजा मिली।
तो अहम पहलू क्या है?
अहम पहलू ये है कि इस पूरी धोखाधड़ी, पारिवारिक उथल पुथल और दो बहनों के बीच एक पति के लिए होने वाले जीवन भर के संघर्ष के बावजूद ईश्वर की योजना रुकी नहीं। हारान में बिताए गए इन वर्षों में जैकोब की इन पत्नियों और उनकी दासियों से कुल 11 बेटों का जन्म होता है, और ये 11 बेटे कोई और नहीं बल्कि भविष्य में इसराइल की जनजातियां यानी ट्राइब्स ऑफ इसराइल के प्रमुख बनते हैं।
अरे वाह, मतलब इस पूरी गड़बड़ी से ही वो जनजातियां निकली। बिल्कुल, भगवान की योजना इस छली परिवार, एक धोखेबाज ससुर और आपस में लड़ती पत्नियों के बीच से भी अपना रास्ता निकाल रही थी। मानव इतिहास की इस गंदगी में भी ईश्वरीय संकल्पना आकार ले रही थी।
ये वाक्य विचार करने योग्य है। इस पूरी गहन चर्चा से हमें ये समझ में आता है कि इतिहास की बड़ी घटनाएं हमेशा एकदम साफ सुथरे आदर्श और परफेक्ट लोगों द्वारा नहीं रची जाती।
सही कहा।
आइज़ैक, जो अपनी निष्क्रियता में अंधा हो गया था, रिबेका, जिसने अपने ही पति के खिलाफ साजिश रची, जैकब, जो एक स्वार्थी और चालाक इंसान था, ये सभी गहरी कमियों वाले इंसान थे। ये कहानी हमें बहुत बड़ी राहत भी देती है कि किसी बड़ी योजना का हिस्सा बनने के लिए या इतिहास में कोई अहम भूमिका निभाने के लिए आपको एकदम परफेक्ट होने की आवश्यकता नहीं है।
बिल्कुल, और ये भी कि हम अक्सर जिन चीजों को सिर्फ एक छोटा सा व्यक्तिगत या पारिवारिक विवाद समझते हैं, उनका प्रभाव समय के साथ कितना विशाल और अकल्पनीय हो सकता है।
और यहीं पर मैं आज की चर्चा का अंत एक बहुत ही गहरे विचार के साथ करना चाहती हूँ। जरा इस पूरी कड़ी पर फिर से नजर डालिए। आइज़ैक ने अपनी जिम्मेदारी को नजरअंदाज किया और अपनी पसंद का खाना खाकर डेस्टिनी बदलना चाहिए। फिर क्या हुआ? बकरियों की खाल पहनकर किए गए उस एक पारिवारिक धोखे की गूंज सदियों तक सुनाई दी। उस मिन शब्द के अनुवाद या उस एक आशीर्वाद के लालच ने सदियों बाद राजा हेरोद जैसे शासक के उदय में भूमिका निभाई,
जो कि एक बहुत ही भयानक शासक था।
बिल्कुल। तो सवाल ये है, अगर हम आज अपने जीवन को देखें, मेरा मतलब है हमारे आसपास होने वाले छोटे छोटे स्वार्थ से भरे व्यक्तिगत निर्णय या हमारे घरों में होने वाले आम पारिवारिक विवाद, वो भविष्य के किन बड़े भू राजनीतिक या ऐतिहासिक बदलावों की नींव रख रहे होंगे जिनका हमें आज कोई अंदाजा ही नहीं है।
ये तो बहुत ही गहरा सवाल
है ना? क्या पता बंद दरवाजों के पीछे लिए गए हमारे आज के किसी छोटे से फैसले की गूंज सदियों बाद किसी पूरी सभ्यता को बदल कर रख दे। सोचने वाली बात है।
बाकी ये हमें अपने फैसलों को एक नए नजरिए से देखने पर मजबूर करता है।
इसी विचार के साथ हम आज की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। गहराई में उतरने के लिए और इतिहास की इन जटिल परतों को उधेड़ने के लिए हमेशा तैयार रहें।